वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं मुदस्सिरा मंजर। पाकिस्तान का सालाना बजट 2020-2021 दुनिया के बहुत से दीगर ममालिक की तरह कोरोना वायरस से मुतासरा एक ऐसे मुल्क का बजट है जिसकी मईशत कोरोना वायरस की वबा से बुरी तरह मुतासिर हुई है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को अपने आदाब पूरे करने से ज्यादा आम आदमी की मदद के मंसूबों पर खर्च करना पड़ा है। गुज़श्ता बजट में भी हुकूमत मुश्किल में नजर आई थी और पाकिस्तान की फौज ने अपने बजट में कमी की पेशकश की थी जो इस मरतबा भी पाकिस्तान के दिफाई बजट में मौजूद है। पाकिस्तान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एशिया स्टडीज के डायरेक्टर शकील अहमद रामी कहते हैं कि गुज़श्ता एक साल के दौरान खित्ते में ऐसे वाकयात हुए हैं कि उनके पेश नज़र अगर पाकिस्तान अपने दिफाई बजट में इजाफा करे तो भी हैरत नहीं होनी चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि हमारा दिफाई बजट सेल्फ डिफेंस का बजट होता है, हकीकी मानों में दिफा का बजट।
हमारा सेल्फ डिफेंस का बजट है, यानी कि अगर हम देखा जाए तो हमारी जो मोस्टली होता है हमें यही होता है कि हमारे खतरात क्या क्या हैं, रीजनल की जो डिफरेंट डायनामिक्स है उसी को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं। इसलिए मैं इसको हमेशा कहता हूँ हमारा तो सेल्फ डिफेंस का है, जो जिस तरह के रियल टाइम में एक्सपेंडिचर्स जिस तरह की दुनिया हमारे हमसाय कर रहे हैं या दुनिया हम देख रहे हैं ट्रेंड एक बढ़ रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर्स का, उस हिसाब से तो हमारा कुछ भी बजट नहीं है या हमारा उस हिसाब से हम उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मगर मिनिमम हमें सस्टेन करना पड़ता है जो हमारे थ्रेट्स की लेवल है हमारे रीजन में।
पाकिस्तान में दिफाई तजिया का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब कहते हैं मुल्की अफवाज को मुल्की मुश्किलात का पूरा एहसास है और यही वजह है कि इस मरतबा भी बजट में कमी से इत्तेफाक किया गया है। हालांकि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कम होने की वजह से जो कटौती गुज़श्ता बरस 23% थी वो अब बढ़कर 30-35% हो जाएगी।
असल जो स्पिरिट है वो ये है कि आर्मी या बाकी फोर्सेस जो हैं वो अपने मुल्क की जो इस वक्त डिफिकल्टीज हैं, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं बड़ी सीरियस, वो उसको इग्नोर नहीं करना चाहते हैं और गवर्नमेंट पे है कि वो इसके साथ रहे। अब यानी ये वॉलंटरीली किया था पहले भी और अब भी। उस वक्त आप देखिए कि पुलिस की कोई कटौती ना हुई, हमारे इंटीरियर मिनिस्ट्री की कोई कटौती नहीं हुई, हेल्थ मिनिस्ट्री की किसी, सबके बजट जो है वो कुछ ना कुछ बड़े थे लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने खुद ब खुद कम किया था।
इक्तिसादी माहिर और कंसल्टेंट कैसर बंगाली कहते हैं कि फौज की जानिब से अपने बजट में कमी की बात को गहराई से देखने की जरूरत है।
देखिए फौज जब कहती है कि हम अपना अखराजात कम कर रहे हैं उसको जरा थोड़ा बिहाइंड द एग्रीगेट्स देखने की जरूरत है। समवेयर इन द 1990s दो चीजें हुई, एक जो फौज का एजुकेशन बजट था जो अंडर मिलिट्री एक्सपेंडिचर आता था, उनका एक एजुकेशन कोर है, उसका कुछ हिस्सा उन्होंने फेडरल एजुकेशन बजट में डाल दिया डिफेंस से निकाल के, वो शो हुआ कि जी फौज का एक्सपेंडिचर कम है। फिर जो मिलिट्री पेंशन्स हैं जो बहुत बड़ा है कंपेयर टू सिविलियन पेंशन, इट इज ह्यूज, वो पहले डिफेंस में आता था अब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ गया। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि देखे जी हमने अपने अखराजात कम किए हैं। तो ये जब फौज कहती है कि हमने एक्सपेंडिचर कम किया है तो हमें ये देखना होगा जाके कि कौन बिहाइंड द फाइनल नंबर ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर, उसका बैकअप क्या है और क्या चीज कहाँ शिफ्टिंग हुई है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फौज पर अखराजात का एक वसीह सिलसिला है जिसे कम होना चाहिए।
लाहौर से आप इस्लामाबाद जाए और आगे फिर पेशावर जाए, विच इज द ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है, जी टी रोड, सिर्फ जीटी रोड पे हर 25 मील के बाद एक कंटोनमेंट है। ये कंटोनमेंट्स बने थे अंग्रेजों के जमाने में 19th century में जब रूस से खतरा था एक इन्वेजन का। अब तो मॉस्को तक दोस्ताना ममालिक है, इनकी क्या जरूरत है, इनको मेरे ख्याल है 2/3 तो इसमें बंद हो जाने चाहिए। इसी तरह कोस्ट गार्ड के, हर मुल्क में कोस्ट गार्ड होता है, हमारे यहाँ कोस्ट गार्ड के साथ साथ एक मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी भी है, एक ही काम दो इदारे कर रहे हैं। फिर हम अपना जो हमारा जनरल हेडक्वार्टर्स है मिलिट्री का वो रावलपिंडी में है, विच इज़ अ ट्विन सिटी टू इस्लामाबाद, ये शिफ्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद, अरबों रुपए खर्च होंगे, काम चल रहा है, इस वक्त काम शुरू हो गया है, लेकिन इसकी कोई सिक्योरिटी डायमेंशन तो नज़र नहीं आती है कि मुल्क GHQ पिंडी के बजाय 15 किलोमीटर शिफ्ट कर जाएगा इस्लामाबाद में तो मुल्क की सलामती बढ़ जाएगी। ये बहुत सारे अखराजात हैं जो हम समझते हैं कि ख़त्म करने की ज़रूरत है।
पाकिस्तान में फौजी अफसरों को सिविल ओहदों पर तैनात किए जाने की रिवायत रही है। मौजूदा हुकूमत ने भी बास अहम ओहदों पर फौजी माहरीन तैनात किए हैं। इस बारे में जनरल शुएब का कहना है कि अगर फौज के रिटायर्ड अफसर ये काबिलियत रखते हैं कि वो सिविल ओहदों पर खिदमत अंजाम दे सकें तो इसमें क्या हर्ज है।
नहीं, इतना नहीं, बात यह है कि ये इशू आजकल बड़ा उछाला गया है। असल चीज ये है कि जो भी रिटायर्ड आदमी है वो पेंशनर है और पेंशन लेता है, लेकिन वो अगर कोई तनख्वाह ले तो पेंशन उसकी बंद कर दी जाती है। सो वो एक तरफ से पैसे लेगा, लिहाजा गवर्नमेंट को ये सूट करता है, गवर्नमेंट को उसमें बचत होती है कि वो उसको उतने ही, अगर उसकी 2 लाख या 2.5 लाख पेंशन है तो इधर से अगर उसको 4 दे रहे हैं तो हकीकतन उसको 2 लाख रुपया मिल रहा है, क्योंकि उसकी वो पेंशन खत्म हो जाती है। तो पैसे के नुकता निगाह से तो गवर्नमेंट को इसमें फायदा रहता है, वरना गवर्नमेंट अगर एक इंडिपेंडेंट लगाए आदमी तो ये पेंशनर तो पेंशन लेता रहेगा, उसको जो दूसरा लगाया जाएगा उसको पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो एक रिटायर्ड ऑफिसर को लेने का गवर्नमेंट को फाइनेंशियली तो हमेशा फायदा रहता है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इन लोगों की एक्सपर्टीज होती है। आप देखिए कि क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ही कितने सीनियर जनरल्स हैं जिनको लगाया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी काम करते रहे हैं उनके, वो CIA के हेड भी लगे रहे हैं, यानी मुख्तलिफ जगहों पे उनको एम्प्लॉय किया जाता है, उनकी अपनी कॉम्पिटेंस देख के। और एट द सेम टाइम एक इकोनॉमिक फैक्टर भी है, फिर आप देख लीजिए कि उन लोगों की एक अपना डिसिप्लिन है जो बेहतर तरीके से डिलीवर करते हैं, तो ये हुकूमतों को फायदा लेना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, वापडा के चेयरमैन है, ही इज ए रिटायर्ड ऑफिसर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, लेकिन ये मियां नवाज शरीफ ने लगाया था और GHQ से पूछा भी नहीं, उसके GHQ से क्लियरेंस भी नहीं हुई थी। खुदा जाने उनका क्या वास्ता था, कोई से उसको पर्सनली उन्होंने कहीं देखा हुआ था काम में। बहरहाल वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑफिसर, बहुत अच्छा। ये मेरा ख्याल है 17.5 साल के बाद एक ऑफिसर है जो लगा वहां पे, और अभी डैम्स वगैरह हमारे बनने शुरू हुए, वरना तो डैम्स का मामला बड़ा कटाई में पड़ा हुआ था, बनते ही नहीं थे। इसी तरह इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाए थे नवाज शरीफ साहब ने, नासर खान जंजुआ, लेफ्टिनेंट जनरल नासर खान जंजुआ, वो भी रिटायरमेंट के फौरन बाद आ गए, और उनका भी कोई GHQ ने नाम नहीं दिया था, कोई क्लियरेंस नहीं हुई थी, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की अपनी चॉइस थी। तो इस तरह ये हो जाता है कि जहां आप समझते हैं कोई आपको सुटेबल। अब इन्होंने इमरान खान ने क्या किया है, 2 जगह पे लोग लिए हैं। एक इन्होंने ये आसम सलीम बाजवा को लिया है जो कि कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर जो है हमारा CPAC का, उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, इज जस्ट कोऑर्डिनेटर, और दूसरा उनके नीचे सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी जो है वो उसकी गारंटी पाकिस्तान आर्मी ने दी हुई है चाइना को, यानी चाइना के साथ ये कंडीशन थी कि पाकिस्तान आर्मी उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले। तो वहां पे एक रिटायर्ड ऑफिसर को रखा गया इस वजह से कि वो सिक्योरिटी वाले एलिमेंट्स उसके नीचे है, वो तीनों सर्विसेज के, एयरफोर्स का भी उसमें एलिमेंट है, ग्वादर पोर्ट के लिए नेवी का एलिमेंट है, और लैंड रूट के लिए आर्मी का एलिमेंट है जो उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये चीजें ऐसी हैं जहां पे ये कंपोनेंट या एलिमेंट्स ऐसे मौजूद हैं, सिक्योरिटी एलिमेंट्स वगैरह, जिनको कंट्रोल करने की जरूरत है। फिर हाउसिंग का जो गवर्नमेंट ने बनाया एक, उसने एक लेफ्टिनेंट जनरल लिया है और एक आध और अभी उसको असिस्टेंट मेजर जनरल के तौर पर दिया गया है।
उनका कहना था कि ये फौजी माहरीन जब भी किसी सिविल ओहदे पर तैनात किए गए उन्होंने अपनी काबिलियत से उस शोबे को तरक्की दी। उन्होंने माजी में पाकिस्तान स्टील मिल्स और PIA में फौजी अफसरों की बेहतर कारकर्दगी की मिसाल दी।
ये PIA का है, PIA का एक एयरफोर्स का ऑफिसर लगे हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि PIA बड़ी तबाह हाल है और इसको बड़ा लोगों ने खाया। अब एयरफोर्स का ऑफिसर है वो भी एक तनख्वाह ले रहा है, इज ए सर्विंग ऑफिसर, वो मोस्ट प्रोबेबली या PIA से ले रहा है या वो उधर से ले रहा है, क्योंकि एक पे मिलती है उसको एयरफोर्स से। अब हमें ये जहन में रखना चाहिए कि एयर मार्शल नूर खान थे जिन्होंने PIA संभाली और वो 4-1 साल रहे, और सिर्फ वही वक्त था जब PIA दुनिया की सफे अव्वल की 4-5 एयरलाइंस में शामिल हुई। उस वक्त हमने एमिरेट भी बना के दी जो आज एमिरेट दुनिया की टॉप की एक एयरलाइन थी, और बहुत सारी एयरलाइंस। तो हमारे पास तजर्बे मौजूद हैं कि जब ये इन्होंने दिया है एयर मार्शल वगैरह को इनको, तो इन्होंने एयरलाइंस को खड़ा किया। वह ये था कि वहां पे जिसको भी लगाते थे वो यूनियंस के होस्टेज हो जाते थे, क्योंकि वहां पे यूनियंस हैं, और इसके साथ साथ वहां पे इसी तरह पॉलिटिकल एक्टिविटी جہاں جس کی مرضی اس کو ٹرانسفر کرا دیا, اور وہ جو ایم ڈیز ہیں وہ چونکہ یونین کے آگے بول نہیں سکتے, اب وہاں پہ ایئر مارشل آ گیا, انہوں نے آ کے یونینز کو بھی کنٹرول کر دیا, بلکہ ایک دو یونینز تو بند ہی کرا دی انہوں نے. تو یہ ہے کہ یہ اسٹیل مل ہوئی, یہ ہوا. اب اسٹیل مل جنرل قیوم چلا رہے تھے 2008 میں, انہوں نے چھوڑی 2007 میں, اس وقت 20 ارب روپے کا پروفٹ تھا. آج وہاں پہ آپ 20 یا 25 ارب روپیہ سالانہ ان کو اپنی جیب سے دینا ہے, یعنی وہ ٹھیک ہی نہیں, پتا نہیں کتنے سالوں سے بند پڑی ہے, ایک پیسے کی آمدنی اور لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں. تو یہ جب حالات ہوتے ہیں تو پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر آرمی نے اچھا, آرمی کے کسی ریٹائرڈ آدمی نے اچھا چلایا تھا تو ان کو پھر بلاؤ.
کیسے بنگالی نے اس سے اتفاق نہیں کیا؟
کسی ادارے کو 2 سال کے لیے منافع بخش کرنا بہت آسان ہے, کیونکہ میں اکانومسٹ ہوں اور مجھے پتا ہے کس طرح یہ ہو سکتا ہے. مطلب اگر میں نے پرانا اسکریپ بیچ دیا تو اس وقت ریونیو بڑھ گیا, پروفٹ میں چلا گیا. جب جنرل مشرف وہ آئے تھے تو ایک فارمر آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے جو ریلوے منسٹر بن گئے تھے, تو انہوں نے کہا میں 6 مہینے میں ریلوے کو خسارے سے پروفٹ میں لے آؤں گا. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو ریلوے کی زمین پہ کچی آبادیاں ہیں جو 40-40 سال سے وہاں پر ہے, ان کچی آبادیوں کو ہٹا کے زمین بیچیں گے تو ریلوے پروفٹ میں آ جائے گا. کمال کی بات تو یہ ہوتی کہ جو ریفارم کرتے ان کے دور میں, فوجی دور میں, اور وہ اس کی وجہ سے ایک مضبوط ادارہ کھڑا ہو جاتا آگے چل کے. 2 سال کے بعد پھر کولیپس کر گیا, تو آپ نے ظاہر ہے آپ نے تو وقتی طور پہ بہتر کر دیا, اس کی کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کی اور کوئی بہتری نہیں کی.
انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ہی نہیں, حاضر فوجی افسر بھی بعض عہدوں پر تعینات کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے افسر پینشن بھی لیتے ہیں اور تنخواہ بھی. انہوں نے کہا کہ اس کی مثال کراچی میں تعینات رینجرز ہیں جو 2 تنخواہیں لیتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فوج اپنے تعمیراتی منصوبوں کے اخراجات اپنے وسائل سے پورے کرتی ہے, اور اس کا ہاؤسنگ کا شعبہ اتنا بہتر اور منظم ہے کہ حکومت نے بھی اسے ہاؤسنگ کے اپنے منصوبوں کے لیے قابل قدر جانا ہے.
پھر ہاؤسنگ کا جو گورنمنٹ نے بنایا ایک, اس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل لیا ہے اور ایک آدھ اور ابھی اس کو اسسٹنٹ میجر جنرل کے طور پہ دیا گیا ہے. اب آرمی میں ہاؤسنگ کا ایک بہت بڑا محکمہ ڈپارٹمنٹ ہے جو ہم اپنے لوگوں کے لیے گھر بناتے ہیں, اور وہ ہم اپنے سروس میں سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل تک کے رینک تک ہم سبسیڈائز وہ دیتے رہتے ہیں, سبسکرائب کرتے رہتے ہیں. تو سبسکرپشن کی وجہ سے پیسہ جمع ہوتا ہے, آخر پہ جب مکان بنتا ہے آرمی بنا کے دیتی ہے, تو چونکہ بلک میں بنتے ہیں وہ آپ کو بڑا سستا اور کاسٹ ٹو کاسٹ آرمی دیتی ہے, تو جو پیسہ آپ کا جمع ہے وہ پلس جتنا ایڈیشنل لگا وہ آپ کو آپ کی جو کیومولیٹو پینشن ملتی ہے آپ کو اس میں سے کاٹ لیا جاتا ہے. تو ان لوگوں کو یہ تجربہ تھا ہاؤسنگ کا, سو انہوں نے گورنمنٹ نے کہا کہ جی آپ کے اتنے سکسیسفل ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, آپ اپنے سارے سروس کو دیتے ہیں اور بناتے بھی آپ بڑی کم قیمت میں ہیں, تو ہمیں اپنی آپ کی ایکسپرٹیز چاہیے تو اپنے لوگ دیں. سو ان کو 2-1 آفیسر وہاں سے دیے گئے جو ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ چلا رہے تھے.
تاہم قیصر بنگالی کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ فوج کی یہ تعمیرات پائیدار رہی ہوں.
یہ مت ہے. بہت ساری کراچی میں ایک پل بنایا گیا, کانٹریکٹرز فوجی وہ تھے, 15 دن کے بعد وہ پل گر گیا اور اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی. وہ انکوائری ہوئی لیکن کوئی بات آگے دوبارہ میڈیا میں نہیں آئی. تو اس طرح ناکامی کے بے شمار. ابھی کراچی میں انہوں نے گلیاری ایکسپریس وے بنایا جنرل مشرف کے دور میں. تو جو بنانے کا سارا جواز یہ تھا کہ جو ہیوی ٹریفک ہے وہ میں سڑکوں سے ہٹ کے ہی ایکسپریس وے پہ چلا جائے گا. جب ایکسپریس وے بن گیا تو اب ہیوی ٹریفک اس پہ الاؤڈ نہیں ہے. جب معلوم کیا اب یہ کیوں الاؤڈ نہیں ہے, اور انہوں نے کہا جی یہ بہت کمزور ہے, ہیوی ٹریفک ہینڈل نہیں کر سکتا.
لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کہتے ہیں کہ فوج کے بعد صنعتی منصوبے ایسے ہیں جن سے برآمدات بھی ہوتی ہیں اور فوج اپنے اخراجات بھی پورے کرتی ہے.
جو ایمونیشن فیکٹریز ہیں نا ہماری, جیسے یہاں پہ بنتا ہے, اس کا تو اپنا بجٹ ہے. کچھ وہ پیسہ خود بھی جنریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت سارے کچھ سول آئٹمس بھی بناتے ہیں, اور کچھ یہ جیسے وہ ایکسپلوسیو وغیرہ بنا کے, تو یہ کنسٹرکشن کمپنیز اور جو سیمنٹ بنانے والے کارخانے یہ وہ ان کو دیتے ہیں کیونکہ بلاسٹنگ کرتے ہیں چیزیں, اور بھی اس طرح کے کچھ وہ کارٹیجز بیچتے ہیں, کئی چیزیں ہیں جو وہ بیچ کے کچھ پیسہ خود جنریٹ کرتے ہیں, کچھ ایکسپورٹ سے کرتے ہیں اور کچھ حکومت دیتی ہے. تو اس وجہ سے وہ میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر کوئی بہت ایکسٹرا کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت ہوگی, وہ پرانے بجٹ ہی شاید کام کریں. इसके अलावा जो हमारे जैसे हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स है, ये बाहर के काम करते हैं और उससे पैसा ये खासा जनरेट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं एपीसी वगैरह ये वो। और बाहर का ये है कि इन्होंने मसलन पुलिस के लिए, प्रोविंशियल पुलिस पुलिस महकमे हैं उनके लिए कुछ बनाया, उनको गाड़ियां बना के दी, कुछ और करके, तो वो उनसे पैसे कमा लिए, वो उनके बजट से आ गए। तो इस तरह कुछ ये कमा लेते हैं, कुछ इनको देना पड़ता है।
दो बातें इसमें है। पहली बात ये है कि जो उनके कमर्शियल एंटरप्राइजेस हैं, उन पैसों से डिफेंस के एक्सपेंडिचर वो बजट में नहीं जाता, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो उन्हीं के इदारों में रहते हैं, उनकी जो इनकम है, उनके जो रेवेन्यूज हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्रेजरी में नहीं जाता। डिफेंस एक्सपेंडिचर टोटली ये बजट से लेते हैं। दूसरा ये है कि सवाल पैदा होता है, क्या फौज का काम है कमर्शियल एंटरप्राइजेस चलाना? मतलब यहाँ तक के अब तो धोबी का काम भी इन्होंने शुरू कर दिया, देयर इज अ आर्मी, एक लॉन्ड्री है इनकी, कसाई का काम भी इन्होंने शुरू कर दिया है, मीट प्रोसेसिंग प्लांट है और बुचर्स शॉप है फौज की, तो ये क्या फौज का काम है? जब एक ज्यादा बड़ा सवाल पैदा होता है ना, सिर्फ रुपये पैसों के अलावा। आम लोगों के लिए है, मतलब आई कैन, मैं अपने कपड़े दे सकता हूँ फौजी लॉन्ड्री को, मैं फौजी मीट शॉप से जाके खरीद सकता हूँ गोश्त, अस्करी बैंक है मैं अपना अकाउंट खोल सकता हूँ, सबके लिए है। लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर से कम्पीट करते हैं फिर, और प्राइवेट सेक्टर की स्पेस रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि इनको तो एक किस्म की बैकअप है स्टेट की, इनका इनके इनके बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स स्टेट से अंडर रिटर्न होती है इनफॉर्मली। फिर सबसे ज्यादा जमीन जो है, हाउसिंग तो टोटली अब फौजी चलाती है ना, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के मीलों के हिसाब से जमीन हर शहर में, कराची, हैदराबाद, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, आधे से ज्यादा शहर जो है वो फौजी है। जमीन इनको दी गई है मिलिट्री पर्पजेस के लिए, लीज जो इनके पास है, लेकिन वहाँ वो वहाँ प्राइवेट रेजिडेंशियल हाउसिंग भी बनाते हैं और देते हैं, और कमर्शियल सेंटर्स भी बनाते हैं। देखिए मसला सहूलतों का नहीं है, ये सहूलतें नहीं है, आपने पूरा पूरा एक सेक्टर कॉर्नर कर दिया। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में फौज की मोनोपोली है, हाउसिंग इंडस्ट्री में फौज की नियर मोनोपोली है, रोड ट्रांसपोर्ट में नेशनल लॉजिस्टिक सेल डोमिनेट करता है। तो मईशत के जो सेक्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट सेक्टर्स जो हैं, वो अब फौज उसको कमर्शली चला रही है। जिसका जो काम है वही करे ना, फौज का काम है दिफा करना, फौज दिफा करे। अब जो कोर कमांडर होते हैं वो डीएचए के चेयरमैन भी होते हैं, तो कोर कमांडर की सैलरी अगर मैं अपने टैक्स के पैसों से दे रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ ताकि वो हमारी दिफा करे।
पाकिस्तान में फौज न सिर्फ सरहदों की हिफाजत करती है, बल्कि किसी भी मौसमी आफत, ख्वाब सैलाब हो, जलजला या कोई और कुदरती आफत, फौज सिविलियन आबादी की मदद के लिए मौजूद होती है। सी पैक जैसे तरक्याती मनसूबे जो बैन अलावामी अहमियत के हामिल हैं, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी फौज संभाल रही है, और मुल्क को दहशतगर्दी के इफरीत से महफूज रखने के लिए फौज की खिदमात और कुर्बानियाँ न सिर्फ मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए असासा हैं, बल्कि तारीख में भी रकम हो चुकी हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट में एशिया स्टडीज़ के डायरेक्टर शकील अहमद रामी कहते हैं, मुल्क एक ख़ानदान की तरह होता है, और इसमें अगर फौज और सिविलियन मिलकर काम करते हैं तो इसे काबिले क़द्र समझना चाहिए।
देखिए ये एक फैमिली है, कंट्री एक फैमिली होता है, तो उसमें जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं उस हिसाब से वो कर रहे होते हैं। जिसको मैं तो इसको कभी इस चीज़ को बाय नहीं करता सिविल मिलिट्री की, जब ये बात करते हैं ये सारे रोल्स हैं जो हमने डिफाइन किए हुए हैं एक दूसरे के लिए। अब जो जहाँ पर रोल बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो वो उसको कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो सिविलियन अदारों में आते हैं कि वो फौज के बजट लेने के लिए नहीं आते हैं, वो सिविल अदारे की जो जरूरत होती है उसको पूरा करने आते हैं। तो इस हिसाब से यानी कि उन दो चीज़ों को मिक्स करना मुझे कोई जस्टिफाइबल नहीं लगता जी।
ताहम पाकिस्तान के माशरे में फौज और सिविलियन का फर्क मौजूद है, और इस फर्क को दूर करने के लिए शायद कोई माहिर मौजूद नहीं है। मुदस्सिर मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।